నమో అరిహంతాళం నమో సిద్ధాళం నమో ఆయిర్యాళం నమో వజ్రాయాళం నమో లోయే సౌవసహుణం. ఆచార్య శ్రీ మాన్తుంకే భక్తామర్ కే భావ కే పూర్వ చర్మ చక్షువో కో బంద్ కర్ జ్ఞాన చక్షువో సే ఆది జినేష్ కే సమో శరణ్ కీ ఓర్ జాతే హువే హమ్ కల్పనా కరే. హమారే చరణ్ సమో శరణ్ కీ ఓర్ ఆగే బడ్ రహే హై. దేఖో మాన్ స్తంభ పర్ స్థిత్ రత్నమయీ జిన్ బింబ్ కే దర్శన్ హో రహే హై. కదమ్ కదమ్ పర్ మాన్ కషాయ్ కర్పూర్వత్ క్షీణ్ హోతీ జా రహీ హై. దర్శన్ పూర్వ హమ్ రాజా వ రంక థే లేకిన్ అబ్ సిర్ఫ జిన్ భక్త బన్కర్ జా రహే హై. లో అబ్ హమ్ మాన్ స్తంభ కే సమీప్ పహుంచ్ గయే హై. ఆయే జిన్ బింబ్ కీ వందనా కరే చలియే ఆగే బడే. లో ధర్మ చక్ర ధారణ కర్ దేవ్ ఖడా హై. ఆయే జయ జినేంద్ర కరే. ఆహాహాహా సునో సమ్మో శరణ్ కే దేవో ద్వారా బజాయి జా రహీ ఢేరీ సునాయి పడ రహీ హై. ఓర్ హమ్ జేసే జేసే ఆగే బడ్ రహే వేసే వేసే హమారే క్రోధ మాన్ మాయా లోభ కషాయే ఝర్ ఝర్ కర్ ఝర్ రహీ హై. లో హమ్ రత్నమయ ప్రథమ గోపుర్ కే తోరణ్ ద్వార్ పర్ రత్న దండధారీ దేవ్ కుమార్ ద్వారపాలో కో సమ్ముఖ పాకర్ ప్రవేశ్ సే ఝిజక్ రహే. లేకిన్ దేవ్ ద్వారపాల్ హమారా అభివాదన్ కర్ ప్రవేశ్ కర్వా రహే. అవధి జ్ఞానీ దేవ్ కుమారో కో హమారే భావో కా బినా బతాయే ఆభాస్ హై. లో హమ్ ఇంద్ర నీలమణి కే ఫర్ష్ కీ ప్రథమ చైత్య ప్రసాద్ మే ఆ గయే హై. దేఖో రత్న నిర్మిత జినాలయ నజర్ ఆ రహే. తనిక్ ఉత్సుకతా కో విరామ్ దేకర్ హీరక్ నిర్మిత జిన్ బింబ్ కీ వందనా కరే. ఓం జయ 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 నిస్సహి 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 నమోస్తు నమోస్తు నమోస్తు. ఓం నమో అరిహంతాళం నమో సిద్ధాళం నమో ఆయిర్యాళం నమో వజ్రాయాళం నమో లోయే సౌవసహుణం. భగవాన్ కి నాసాక్ దృష్టి ఆత్మదర్శన్ కర్ రహీ హై. హమ్ భీ అప్ని ఆత్మా మే జినేంద్ర దేవ్ కో విరాజ్ మాన్ కర్ ఆత్మదర్శన్ కరే. లో తీర్థ గంధోదక్ కి సువాసిత్ ఆహ్లాదకారీ గంధ సే హమారే మన్ ప్రఫుల్లిత్ హో గయే హై. తథా దూసరే స్వర్ణ నిర్మిత పర్కోటే కే తోరణ్ ద్వార్ పర్ హమ్ ఆ గయే హై. జహాం పూర్వ రత్న దండధారీ దేవ్ కుమార్ ద్వారపాల్ హమారా అభివాదన్ కర్ ప్రవేశ్ కర్వా రహే హై. ఇన్ దేవో కి జగమగాతీ మణియో సే నిర్మిత కంకణ ముకుటో ఇత్యాది కా మన్మోహక్ రూప్ దేఖ్ కర్ హమ్ ప్రసన్న హో గయే హై. ఆయే ఇస్ సువాసిత్ తీర్థ గంధోదక్ కో శిరోధార్య కర్ హమ్ ఆత్మా కా శోధన్ కరే. లో అబ్ హమ్ తీసరే స్వర్ణ నిర్మిత పర్కోటే కే తోరణ్ ద్వార్ పర్ ఆ గయే హై. యహాం పూర్వవత్ మణియో నిర్మిత ముకుట ఆది ఆభూషణ్ ధారీ దేవ్ కుమార్ ద్వారపాల్ జో రత్నమయీ దండో కే ధారీ హై హమే వినమ్రతా పూర్వక్ ప్రవేశ్ దే రహే. ఇస్ తృతీయ లతా భూమి మే స్వర్గ పుష్పో సే ఆచ్ఛాదిత దేవ్ వృక్షో కీ సువాసిత్ గంధ జో హమే బినా ప్రతికార్ కే మిల్ రహీ హై కో లేకర్ అప్ని ఆత్మా కో కర్మమల్ సే ధోకర్ నిర్మల్ కరే. లో హమ్ పద్మరాగమణి నిర్మిత చౌథె పర్కోటే కే తోరణ్ ద్వార్ పర్ ఆ గయే హై. జహాం పూర్వవత్ ముకుట ఆభూషణ్ ధారీ దేవ్ కుమార్ ద్వారపాల్ రత్న దండ లియే హమే వినమ్రతా పూర్వక్ ప్రవేశ్ దే రహే హై. అబ్ హమ్ చౌథీ గ్రహణశా భూమి మే ఆ గయే హై. ఇత్నీ యాత్రా కే బాద్ హమే థకాన్ నహీ ఆయీ. సమ్మో శరణ్ కీ ఇంద్ర నీలమణి కే ఫర్ష్ పర్ చల్నే సే థకాన్ కా ప్రశ్న హీ నహీ ఉపస్థిత హోతా. యహాం స్థిత చైత్య వృక్షో కే ఉద్యాన్ కా అవలోకన్ కరే. హమారే కానో మే ద్వాదశ కోటి దేవ్ వాద్యో కీ ధ్వని ఆ రహీ హై. సాథ్ హీ దేవో కీ స్తుతి కీ మనోరమ ధ్వని ఆ రహీ హై. హమ్ భీ ముఖ సే నహీ తో భావో సే జినేంద్ర స్తుతి కరే. ఆయే ఆగే బడే. లో హమ్ పంచమ స్వర్ణిమ పర్కోటే కే తోరణ్ ద్వార్ జహాం పూర్వవత్ స్థిత రత్న ముకుట ఆభూషణ రత్న దండ ధారీ దేవ్ కుమార్ ద్వారపాల్ హమే వినమ్రతా పూర్వక్ ప్రవేశ్ దే రహే హై. లో హమ్ ఉపవన్ భూమి మే ప్రవేశ్ కర్ గయే जहां सभी अहिंसक सम्यकदर्शी सैनी पंचेंद्री सिंह अश्व वृषभ आदि जीव हमें वाणी से नहीं भावों से जय जिनेंद्र कर रहे हैं, हम भी उनका अभिवादन कर कहें जय जिनेंद्र। आइए आगे बढ़े। लो हम चठे स्वर्ण निर्मित परकोटे के तोरण द्वार पर आ गए हैं, जहां पूर्ववत मुकुट आभूषणधारी देव कुमार द्वारपाल रत्न दंड लिए विनम्रता पूर्वक प्रवेश दे रहे हैं। हम चठी ध्वज भूमि में आ गए हैं। यहाँ विभिन्न पावन चिन्हों से मंडित स्वर्णिम ध्वजाएं फहरा रही हैं। इस वेदिका में सिद्ध वृक्ष व कल्प वृक्ष विद्यमान है। कल्प वृक्षों से मनवांछित वस्तु ले सकते हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि जिन दर्शन के लोभ के अतिरिक्त सभी कषायों का तो क्षरण हो चुका है। यहाँ देव निर्मित इंद्रजाल है। यहाँ उलझना रत्नों की खान में कोयला मांगने के समान है। आइए आगे बढ़े। अरे यह अवरोध क्यों, हम स्फटिक मणि निर्मित सप्तम परकोटे से टकरा गए हैं। शुद्ध स्फटिक मणि का परकोटा हमें कैसे नजर आएगा। यहाँ के तोरण द्वार पर पूर्ववत मुकुट आभूषणधारी रत्न दंड धारण कर देव कुमार द्वारपाल खड़े हैं, जो हमें विनम्रता पूर्वक प्रवेश दे रहे हैं। हम सप्तम कल्प वृक्ष भूमि में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ वीथिकाओं में नृत्यशालाएं व नाट्यशालाएं हैं, जिनमें यक्ष कुमारी देवियाँ जिन स्तुति करते नृत्य कर रही हैं, तथा देव कुमार व देव कुमारियाँ नाटकों की प्रस्तुति कर रही हैं। मन तो ललक रहा है कि इसका आनंद लेवे, लेकिन साक्षात जिनेंद्र देव के अलौकिक दर्शन की कामना हमें रुकने की अनुमति नहीं दे रही है। आइए आगे बढ़े। लीजिए अष्टम स्वर्णिम परकोटे के तोरण द्वार पर आ गए हैं। यहाँ भी पूर्ववत देव कुमार द्वारपाल विनम्रता पूर्वक हमें प्रवेश दे रहे हैं। हम अष्टम मंडप भूमि में प्रवेश कर गए। इस वेदिका में रत्नत्रयी मुनिश्री श्रावकों को जिनवाणी माता का उपदेश दे रहे हैं। सर्वांग से खिर्ति साक्षात जिनदेशना के श्रवण की अपेक्षा से नमोस्तु कर आगे बढ़े। रत्नमयी नवम परकोटे के तोरण द्वार पर कोई भी द्वारपाल नहीं नजर आ रहा है। जिन भगवंत के दरबार में द्वारपालों की आवश्यकता ही क्या है। इस नवम वेदिका का अवलोकन करें। जिनेंद्र देव केंद्र में है तथा विभिन्न दिशा विदिशाओं में 12 प्रकोष्ठ हैं, जिनमें देव देवियां, मनुष्य त्रियंश सब कुछ भूलकर आनंद निमग्न होकर स्थित हैं। हम मनुष्यों के प्रकोष्ठ में जहां गणधर चक्रवर्ती मुनि व श्रावक हैं अपना स्थान ग्रहण करें। यहां मध्य में 3 पीठिकाएं हैं, निचली वेदुरमणि की, मध्य की स्वर्ण की, ऊपर की रत्नमयी पीठिका है। रत्नमयी अंतिम पीठिका पर चारों दिशाओं में 4 सिंह स्थित हैं। सिंहों की आंखें लाली रत्न के समान हैं तथा अयाल केसर जैसे केशरी हैं। सिंहों के मस्तक पर रत्न थाल है, जिस पर सहस्त्रदली स्वर्ण कमल है, जिसकी केसर कर्णिकाएं सर्व दिशाओं को सुवासित कर रही हैं। इस स्वर्ण कमल की मध्य केसर कर्णिका से 4 अंगुल अंतरिक्ष में द्विकोटि बाल सूर्यों की प्रभा के तुल्य शीतल मनोरम प्रभावान पद्मासन में पूर्वमुखी वृषभ लांछन वाले जिनेंद्र देव विराजमान हैं, जिनके दर्शन पाकर अपने ज्ञान चक्षुओं को धन्य करें। सम्भव शरण का अंश मात्र वर्णन भी इस स्वभाव से उपहारित कलम से करने में अक्षम हूं। राजा भोज व कालिदास के कृत्य से पंचम काल में कल्याणकारी भक्तामर प्राप्त हुआ, जिसकी निष्काम स्तुति से साक्षात मोक्ष मार्ग तथा सकाम स्तुति से प्रथम लौकिक तथा अंततः मोक्ष मार्ग मिलता है। आचार्य श्री मानतुंग की उपकारी स्तुति से हम अपनी आत्ममणि को आवरणीय कर्म बलों से निर्मल करें तथा धारणा करें कि हम समोशरण में स्थित साक्षात आदि जिन की सर्वांग से कीर्ति ओंकार ध्वनि में देशना को सुने। हे धर्म तीर्थ संस्थापक, जैसे सभी ज्योतिष राशियों में वृषभ प्रथम स्थिर राशि है, उसी प्रकार विद्यमान हुंडा अवसर्पिणी काल में आपने सर्वप्रथम स्थिर धर्म तीर्थ की स्थापना की, तदोपरांत आपके स्थापित धर्म तीर्थ में आगामी 23 तीर्थंकरों के धर्म तीर्थ समाहित हुए। हे आद्य परम गुरुदेव, आपके चरणारविंद के दर्शन की आकांक्षा से भक्तिरत नमित देवों के मुक्तों की मणियां आपके पाद युगलों से उत्सर्जित सौम्य प्रभा से जगमगा रही हैं। उसी प्रकार आपकी केवल ज्ञान प्रभा सादी अनंत काल तक तीनों लोकों में व्याप्त मिथ्यात्व अंधकार का नाश कर उन्हें जगमगाएगी तथा इस भावसागर के पाप अंधकार को जय कर तीनों लोकों के जीवों को रत्नत्रय का आश्रय देकर मोक्ष मार्ग प्रदान करेगी। हे भवतारक, मैं अज्ञानी भी आपके पाद युगलों की मंगलाचरण वंदना करते हुए रत्नत्रय की कामना करता हूँ। मोक्ष मार्ग की मेरी सकाम आकांक्षा को आप ही आश्रय देवेंगे। सभी तीर्थंकर समान रूप से मिथ्यात्व अंधकार का नाश करते हैं, लेकिन 18 कोड़ा कोड़ी सागर के भोग भूमि काल में हुए सुप्त धर्म तीर्थ को आपने सहस्त्र वर्षों के तप से केवल ज्ञान सूर्य को प्रथम प्रकाशित किया। इस अपेक्षा से आप प्रथमेश पद सार्थक करते हैं। हे प्रथमेश, आपकी स्तुति को मैं प्रस्तुत हूँ। हे विभु, सोधर्मेंद्र जो अनेक तीर्थंकरों की देशना से प्रवीण सकल वाङ्मय के ज्ञाता होकर त्रिभुवन मोहक वाणी में आपकी स्तुति करता है, इसके समकक्ष में अज्ञानी तो सिर्फ भाव पुष्प ही अर्पित करता हूँ। हे करुणामयी अभयदाता, मेरे द्वारा आपकी इस भाव स्तुति ने तो सोधर्मेंद्र के समकक्ष बना दिया गया है और शंकाहीन दृढ़ विश्वास है कि आप मुझ अज्ञानी को अपने समान बनावेंगे। हे उदार मना, मेरा यह संकल्प आप पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार निर्विकार चंचल बालक जल में दिखने वाले चंद्र खिलौने को लेने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार में अज्ञानी लज्जाहीन होकर आपकी देववंदित पादपीठ का स्तवन करता हूँ। मुझ अज्ञानी की भाव सहित स्थापना को हे क्षमाभूषण ग्राही करे। अवसर्पिणी कल्प के अंत में पर्वतों को चूर्ण करने वाले उद्धवत प्रबल पवन से उद्वेलित सागर जिसमें क्षुब्ध मगरमच्छ आदि जल जीव भरे हैं, ऐसे सागर को भुजाओं से पार करने का दुस्साहस कौन मनुष्य कर सकता है? उसी प्रकार आपके अनंत गुणों का वर्णन देव ऋषि लोकांतिक देव भी करने में असमर्थ है, फिर मुझे अज्ञानी की क्या विसार। मैं तो आप जैसे ज्ञान सूर्य को दीपक दिखाकर अपने अंतरंग में अज्ञान अंधकार को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। माता का शिशु प्रेम अवर्णनीय है। शक्तिहीन हिरणी यह जानकर भी कि वह काल का ग्रास बनेगी, शावक की रक्षावश क्रोध में उन्मत्त सिंहों से लड़ने को प्रस्तुत हो जाती है। उसी प्रकार हे विभो, मैं अपनी अक्षमता जानकर भी भाववश आपकी वंदना को प्रस्तुत हूँ। भवतारक दया सिंधु से मुक्ति की अपेक्षा करते हुए परिणामों की परवाह नहीं करता। जिस प्रकार कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखकर उससे सेवा करवाकर खुद को बहुत चतुर मानती है, वही मतिहीन कोयल आम्र मंजरी के पराग के सेवन से मधुर कुहुवाणी को बोलकर शिकारियों को अपना ठिकाना बताती है। उसी प्रकार मैं मूर्ख अभिमानी यह जानकर कि द्वादशांक के ज्ञाता की हंसी का पात्र बनूंगा, आपकी भक्ति की भावना से प्रेरित होकर स्तुति को प्रस्तुत हूँ। चाहे मेरा कितना ही उपहास हो, मेरी यह कामना है कि आगामी भवों में तीर्थंकर के सर्वांग से खिरती जिनवाणी का श्रवण करूं। जिस प्रकार रवि के उदय के पूर्व अंधकार का नाश होना प्रारंभ हो जाता है तथा पक्षी वृंद रवि वंदना प्रारंभ कर देते हैं तथा सूर्योदय से अंधकार का समूल नाश हो जाता है तथा उल्लू सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाता है, उसी प्रकार तीर्थंकर के गर्भ आगमन के पूर्व ही देव वंदना प्रारंभ कर देते हैं तथा केवल ज्ञान सूर्य के प्रकाश में भव्य जीवों की पाप अंधकार का नाश हो जाता है और अभव्य जीव आपकी केवल ज्ञान प्रभा का लाभ नहीं ले पाते हैं। पंचम काल में आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि उसका प्रतिबिंब ही दे पाते हैं, क्योंकि साक्षात देशना पंचम काल में उपलब्ध नहीं है। अतः भावना है कि अगला जन्म विधेय क्षेत्र में प्राप्त कर जिनवाणी का प्रत्यक्ष श्रवण करूं। जिस प्रकार कमल दल पर पड़े जलबिंदु दूर स्थित सूर्य के प्रकाश से मोती के समान चमकते हैं, उसी प्रकार आचार्य श्री मानतुंग की यह स्तुति श्रावकों की आत्मा पर छाए मिथ्यात्व अंधकार को दूर कर मुक्ता के समान मुक्त करेगी। जिस प्रकार घास पर पड़ी ओस बूंदे सूर्य के प्रकाश से मुक्तावत चमकती है तथा कुछ समय बाद वाष्पित होकर मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार आचार्य श्री की यह स्तुति हमें मुक्तावत सम्यकत्व से प्रकाशित करेगी तथा कालोपरांत मुक्ता या मोक्ष प्रदान करेगी। अति दूर स्थित रवि जिस प्रकार सरोवर स्थित कमलों को प्रफुल्लित कर देता है, उसी प्रकार परमादित्य आपके नाम का निर्दोष भाव सहित स्तवन तथा आपकी भाव सहित स्तुति मात्र ही भव्य जीवों के कर्मों का नाश कर आत्ममणि को जगमगा देती है। इस भक्तामर के भाव सहित स्तवन श्रवण से पापों का नाश होता है। हम अज्ञानी जीव श्रद्धाहीन भाव से शंका करते हुए भक्तामर के स्तवन मात्र से अनेक लौकिक आकांक्षाओं का भी लाभ प्राप्त करते हैं। हे त्रिभुवन रत्न, आपके आश्रितों व आपकी स्तुति करने वालों को आप कर्ममलहीन करके अपने समान कर देते हैं। आपकी दया का कैसे वर्णन करूं कि आप अपमान करने वाले अभिमानी इंद्रभूति को आपने अपने समान बना लिया। आप पर घात करने की इच्छा से आप पर शिला वर्षा करने वाले कमट को भी आपने अपने समान बनाकर उसका उद्धार कर दिया। इस धरा पर कौन ऐसा सेठ या नेता है जो अपने आश्रितों या विरोधियों को यश तथा संपदा देकर स्वयं के समान बनाता है। हे दयानिधान, निश्चित ही मुझे अज्ञानी को आप अपने समान बनाकर मोक्ष प्रदान करेंगे। हे परम सौंदर्यधारी सौधर्मेंद्र, सहस्त्र चक्षुओं से आपका अपलक मनोरम रूप देखकर भी तृप्त नहीं होता, फिर हम चर्म चक्षुधारी कैसे तृप्त होंगे। यदि निशंक दृढ़ श्रद्धा से आपको देख लिया तो संसार में अन्य सरागी देवों को देखने की इच्छा होगी कदापि नहीं। जैसे क्षीर सागर का सुमधुर दूध का पान जिसने किया हो उसे लवण सागर का खारा पानी पीने की इच्छा होगी कदापि नहीं। अरिहंत देव के दर्शन तथा देशना के श्रवण मात्र से सम्यक दर्शी होकर यथार्थ पर श्रद्धान करने वाले अन्य सरागी देवों के दर्शन से तृप्ति की मृत तृष्णा हेतु अन्यत्र भटकेगा कदापि नहीं। हे तीनों लोकों के जीवों के तारणहार, आपका परम औदारिक चरम शरीर तीनों लोकों के समस्त राग द्वेषहीन पर सुपरमाणुओं से रचा गया है। आपके समान अन्य परम औदारिक शरीर की रचना हेतु ऐसे सुपरमाणु शेष ही नहीं बचे, अतः आपके शरीर के समान शरीर की रचना तो संभव ही नहीं है। अशुचि शरीर में निगोदिया जीवों का वास होता है, जो अरिहंत बनने के बाद श्वास के 18वें भाग के समय के उपरांत निगोदिया रहित हो जाता है। तब शरीर तरल स्वर्ण के रंग वाला स्फटिक के समान पारदर्शी द्विकोटि बाल सूर्यों की प्रभा सहित सौम्य प्रभावान हो जाता है। तो क्या परम औदारिक शरीर वाले अरिहंत देव के दर्शन के बाद अन्य सरागी देवों के दर्शन की इच्छा शेष रहेगी? कदापि नहीं। हे विभो, आपका अनुपमेय मुखमंडल जिसने समस्त देवेंद्रों मनुष्यों के नेत्रों को विजय कर लिया है, कामदेवों को भी पराजित कर दिया है, उसकी उपमा किससे करूं? जिससे भी उपमा की जाएगी वह भी आपके मुखमंडल के सौंदर्य से अति अल्प होगा। क्या अनेक धब्बे वाले चंद्रमा से करूं जो दिन में कांतिहीन निस्तेज हो जाता है? क्या आपके सेवक ज्योतिष देव सूर्य से करूं जो नेत्रों को जलाने वाला आपसे द्विकोटि गुना कम प्रभावान है? संसार की समस्त उपमाएं आपसे अति अल्प है। आपका दर्शन जिसे प्राप्त हो जाता है उसकी दृष्टि सम्मोहनवश आपके मुखमंडल से हटती नहीं है। देवेंद्रों की सहस्त्र जिह्वाएं भी आपके रूप का वर्णन करने में असमर्थ है, फिर मेरी चर्म जिह्वा कहाँ समर्थ है? हे अनंत गुणी, आपके क्षायिक सम्यकत्व केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त है। जैसे शरद पूर्णिमा की चंद्र प्रभा समस्त अवनी अंबर को प्रकाशित करती है, हे भगवान, जिसकी ज्ञान प्रभा तीनों लोकों में व्याप्त है, आपके आश्रितों को इच्छानुसार जगत में निर्भय विचरण करने से कोई रोक सकता है? कदापि कोई नहीं। हे कामजयी, सुमेरु पर्वत के समान अडिग आपके मन को रूप से परिपूर्ण सुरबालाएं डिगाने के लिए नहीं वरन परम गुरु से मोक्ष मार्ग की कामना के साथ स्तुति करती मनोरम नृत्य करती है, अतः न तो सुरबालाओं में न ही आपके मन में काम विकार को स्थान है। हाँ, सुरबाला नीलांजना के नृत्यरत शरीर के लोभ से आपको वैराग्य हुआ। क्या भरत एरावत क्षेत्र में कल्प के अंत में पर्वतों को चूर्ण करने को उद्वत प्रबल झंझावत सुमेरु पर्वत को हिला सकता है? कदापि नहीं। देवेंद्र ने सीता का रूप धरकर राम मुनि के मन में विकार भाव लाने का प्रयास किया, उल्टे उस प्रयास से राम मुनि राम केवली बने। क्या सुदर्शन सेठ के मन में काम विकार लाने में रानी सफल हुई? बिल्कुल नहीं। मिथ्यात्व में डूबी रूप गर्विता सुर नर बालाएं अपने अल्प रूप से आपके मन में काम विकार लाने का कितना ही प्रयास करे, रंच मात्र भी विकार भाव ला सकती है? कदापि नहीं। हे स्वयं प्रभु, आप ऐसे ज्ञानदीप हैं जिसके तले अंधकार नहीं, पाती तेल घृत की आवश्यकता नहीं, प्रबल झंझावत में भी स्थिर लो से धुआं या काजल नहीं निकलता। आप जैसे ज्ञानदीप की प्रभा तीनों लोकों को प्रकाशित करती है। हे परम ज्ञानदीप, आपके समक्ष भाव दीपक लेकर मैं आपको प्रकाश दिखाने के बजाय अपने अंतरंग में व्याप्त अज्ञान अंधकार को दूर करने की विनती करता हूँ। आपके समोशरण की प्रभा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। जहाँ आप जैसे 20,000 केवली प्रत्येक द्विकोटि बाल रवि की प्रभा लिए ज्ञानदीप विराजमान है, ऐसे समोशरण में ज्योतिष देव सूर्य अस्त भी हो जाए तो क्या रंच मात्र भी अंधकार होगा? परम गुरु महावीर ने 12 वर्षों के तपस्या काल में चरम शरीर से आत्मज्ञान की लो को पृथक करने का प्रयास किया। चरम शरीर से दीप में घृत की कमी का आभास पाकर 359 बार आहारदान लेकर दाता को उपकृत किया। शरीर दीप में घृत डाला, अंततः कैवल्य सूर्य प्रकट कर जिन शासन की पुनर्स्थापना की, उसी जिन शासन में गौतम गणधर सुधर्माचार्य जम्बू केवली ने कैवल्य सूर्य से पंचम काल के जीवों को भी उपकृत किया। हे मुनिन्द्र, निश्चिंत ही आप अपने ज्योतिष देव सूर्य से अधिक प्रभावान हैं, क्योंकि वह आपकी प्रभा में ही विचरण करता है। आपके केवल ज्ञान सूर्य की प्रभा आधे चौथे काल उपरांत अजित जिनेश्वर के कैवल्य सूर्य में समाहित हुई। जिस प्रकार सिद्ध शिला पर एक सिद्ध की अवगाहना में अनंत सिद्धों की अवगाहना समाहित है, उसी प्रकार आपकी देशना में आगामी 23 तीर्थंकरों की देशना समाहित है। आपकी ज्ञान प्रभा अस्त नहीं होती, तथा आपके सेवक ज्योतिष देव राहु की क्या हिम्मत जो आपके ज्ञान सूर्य को ग्रहण लगावे। अतः शुद्ध देशना के अभाव में हम अज्ञानियों के पास तो सिर्फ भाव ही शेष बचे हैं। हे भगवान, आपके कैवल्य सूर्य की भाव सहित वंदना करते हुए कामना है कि अगला जन्म विदेह क्षेत्र में लेकर विद्यमान तीर्थंकरों के कैवल्य सूर्य से लाभ प्राप्त कर ऊर्ध्वगामी बनूं। हे वीतरागी, द्विकोटि बाल रवि के समान प्रभा लेकिन शीतल प्रभा जो शारदीय पूर्ण चंद्र से अधिक प्रभावान है, कलंकी चंद्रमा की कलाओं के समान आपकी प्रभा घटती बढ़ती नहीं है, आपकी ज्ञान प्रभा स्थिर है। आपकी ज्ञान प्रभा को मेरा भाव सहित नमन। हे स्वयं प्रभु, दिन में सूर्य उदय व अस्त होता है तथा रात्रि में चंद्रमा की प्रभा कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन आप द्विकोटि बाल रवि की प्रभा के समान शीतल प्रभा सहित सदैव जागृत रहते हैं, अतः सूर्य चंद्र का क्या प्रयोजन? खेतों में धान पक गया हो तो गरजते बरसते बादलों का क्या प्रयोजन, वे तो पका धान नष्ट ही करेंगे। जिसे आपकी शीतल प्रभा ने प्रकाशित कर दिया उसे अन्य प्रकाश से क्या प्रयोजन? हे अभयदाता परम ज्योतिर्पुंज, आप आश्रितों को शायद अक्षत ज्ञान प्रभा से प्रकाशित करते हैं तथा अपने समान बनाते हैं। आपकी ज्ञान प्रभा अन्य भयभीत शस्त्रधारी देवों की प्रभा से कैसे तुलना की जा सकती है? शिव भस्मासुर से भयभीत होकर भागते रहे, जिसे विष्णु ने छल से नष्ट किया, तथा ब्रह्मा कुपात्रों को वरदान देकर अपना स्थान छोड़कर भागते रहे। ऐसे देवों की कृष्ण तथा नील लेश्या के समान प्रकाश वाले आभा मंडल का आपके शुक्ल लेश्या के समान प्रभाव वाले आभा मंडल की तुलना कैसे करूं? क्या स्वप्रकाशित मणि की तुलना कांच के मनकों से की जा सकती है? कदापि नहीं। हे त्रिलोक्याधिपति, तुलना करने के लिए अन्य सरागी देवों को देखना आवश्यक है, जिससे आप में व उनमें जमीन आसमान का अंतर स्पष्ट नजर आवे। अन्य धर्मों को छोड़कर आए जैन धर्म अपनाने वालों को यह अंतर सुस्पष्ट होता है। अन्य सरागी देवों को देखने के बाद आपको देखने उपरांत जन्म जन्मांतर में भी अन्य सरागी देवों को देखने की इच्छा भी होगी। मालूम न हो कि समुद्र का पानी खारा है, क्या एक बार पीने के बाद पुनः पीने की इच्छा होगी? कदापि नहीं। हे त्रिभुवन तिलक, सभी दिशाएं भोर प्रभा को धारण करती है, लेकिन एकमात्र पूर्व दिशा ही सूर्य को उदित करती है। उसी प्रकार सभी माताएं शिशुओं को जन्म देती है, लेकिन पूर्व भवों के संचित पुण्य से तीर्थंकर माता के आंगन में गर्भधारण के 6 माह पूर्व से जन्म तक कुबेर असंख्य रत्नों की वर्षा करता है तथा माता की सेवा में 56 कुमारी देवियां लग जाती है। ऐसी पुण्यशाली माता ही एकमात्र तीर्थंकर पुत्र को जन्म देती है, क्योंकि उसे तीसरे भाव में मोक्ष जाना ही है। इसलिए तीर्थंकर माता पूर्व दिशा के समान ही अन्य माताओं से श्रेष्ठ है। कुछ मिथ्यात्वी की तीर्थंकर राजाओं के यहाँ ही जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि आपका तथा आपके माता पिता का अतिशय पुण्य ही इस सुख उपभोग का पात्र बनाता है। हे मिथ्यात्व भंजक, मुनिगण तुझे परम आदित्य के समान तेजस्वी, कर्ममल रहित, निर्मल या अमल बताते हैं। मिथ्यात्व अंधकार विनाशी बताते हैं। हे मृत्युंजयी, आपकी मृत्यु न होने से अमर या यम विजेता सच ही बताते हैं। वज्र वृषभ नाराज संहननी देहधारी सुपार्श प्रभु, पार्श प्रभु व वीर प्रभु पर कुदेव कृत अतिशय से उनके शरीर को कोई हानि हुई? हे मोक्ष लक्ष्मी प्रदाता, आपके द्वारा प्रदत्त मोक्ष मार्ग को धारण कर मुक्ति वधु का वरण करूं। हे भव सागर के ज्ञान दीप, सर्व साधु आपको अव्यय यानी जिसका व्यय न हो, समोशरण की अनेक विभूतियों से विभूषित होने से विभू, निर्विकल्प चिंताहीन ध्यान मुद्रा में लीन होने से अचिंत्य, असंख्य गुणों के धारी होने से असंख्य, प्रथम जिनेश्वर होने से आदि ब्रह्मा, समोशरण के अनंत ऐश्वर्यधारी होने से ईश्वर, जिसका अंत न हो अनंत, कामदेव पर विजय पताका फहराने से अनंग केतु, योगियों के ध्येय होने से योगीश्वर, सभी योगों के ज्ञात होने से विदित योग, अष्टाधिक सहस्त्र नामधारी होने से एवं अनेकांत के ज्ञाता होने से अनेक, केवल ज्ञानी होने से ज्ञान स्वरूप, आपके समान दूसरा न होने से अद्वितीय एवं कर्ममल रहित होने से अमल कहते हैं, वैसे असंख्य गुणों के धारी होने से आपके नामों का अंत नहीं है। सर्व साधु व आचार्य श्री मानतुंग ने भी कुछ ही नाम बताए हैं। हे देवेंद्रनाथ, अन्य देव सांसारिक कर्मों व निद्रा में लील रहते हैं, लेकिन आप सदैव जागृत रहने से बुद्ध कहलाते हैं। आपके गुणों की पूजा शत इंद्र, गणधरों व सर्व साधुओं से की जाती है, इसलिए आप विबुध हैं। तीनों लोकों को शम अर्थात सुख प्रदाता होने से आप शंकर हैं। तीर्थ के प्रथम संस्थापक होने से आदि ब्रह्मा, सर्व पुरुषों में उत्तम होने से पुरुषोत्तम हैं। कर्म जीवों को संसार में विचरण कराते हैं, लेकिन आप मोक्ष मार्ग प्रदान कर सिद्ध शिला पहुंचाते हैं, इसलिए भी आप पुरुषोत्तम हैं। हे तीनों लोगों के दुख निवारक तुझे नमोस्तु, धरा के निर्मल गुण आभूषणधारी तुझे नमोस्तु, तीनों लोगों के परम ऐश्वर्यधारी तुझे नमोस्तु, अनंत जीवों के उद्धारक तुझे नमोस्तु। हे भगवान, मैं भी भव सागर से उद्धार पाने की आकांक्षा से नमोस्तु करता हूँ। बेड़ियों में जकड़े आगामी तीर्थंकर आचार्य श्री समंतभद्र ने काशी के समुद्रेश्वर शिव मंदिर में शिवपिंडी के समक्ष स्वयंभू स्त्रोत की वंदना करते हुए चंद्रप्रभ जिनेश्वर की वंदना में हाथ जोड़कर प्रथम बार वंदे कहने मात्र से शिवपिंडी फटी व चंद्रप्रभ जिनेश्वर प्रकट हुए। भाव सहित जिनेन्द्र देव को नमोस्तु, संसार सागर को फाड़कर मोक्ष प्रदान करता है। हे गुण सागर, संसार के समस्त सद्गुणों ने आपका आश्रय लेकर स्वयं को धन्य किया एवं तीनों लोकों के समस्त सद्गुण आप में ही केंद्रीभूत होकर संघनित हो गए और शेष रहे दोषों ने अन्य कुदेवों को जकड़ लिया, कुदेवों से अनेक अवांछित लौकिक कृत्य करवाए तथा दोषों ने अभिमानवश आपको स्वप्न में भी देखने की चेष्टा नहीं की। यदि वे आपको एक पलक भी देख लेते तो उनका नाश हो जाता। इसमें क्या आश्चर्य है कि समस्त सद्गुण आपके माध्यम से ही शोभा पा रहे हैं। हे आदि जिनेश्वर, आप तीनों लोगों के शोकों के निवारक अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आपके दर्शन उपरांत अशोक वृक्ष को देखने मात्र से समस्त शोक पलायन कर जाते हैं। आपकी देदीप्यमान परम औदारिक देह से मनोरम प्रभा किरणें समस्त दिशाओं में विस्तार पा रही हैं तथा ऊर्ध्वगामी किरणें अत्यंत रमणीय छटा मंडप बना रही हैं, मानो श्यामल मेघ घटाओं को चीरते हुए अंधकार नाशी सूर्य की किरणें फैल रही हों। यह कोई तुलना नहीं वरन आभास मात्र ही है, क्योंकि पंचम काल में आपकी प्रभा को देखने का अवसर ही कहाँ मिला, अतः मजबूरन सूर्य प्रभा से आपकी प्रभा का आभास कर रहे हैं। आप सूर्य के समान स्वप्रभा से शोभायमान हैं। हे जिनेश, आपके कारण अशोक वृक्ष शोभायमान हो रहा है। आगामी भवों में आपके इस अशोक प्रतिहारी के दर्शन की कामना सहित मेरा नमन है। हे कोटि रश्मि, जिस प्रकार उदयाचल पर्वत पर उदयमान बाल रवि अपनी किरण भुजाओं से विस्तृत प्रभा छत्र निर्मित कर रहा है, उसी प्रकार आपकी प्रभा दिशाओं में स्थित सिंहों के मस्तक पर स्थित चित्र विचित्र रत्नों मणियों की रत्न पीठिका को जगमगा रही है। आप इस रत्न पीठिका पर स्थित सहस्त्र दलीय स्वर्ण कमल की केशर कर्णिका से चार अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में पूर्वमुखी पद्मासन मुद्रा में आप्त स्वर्णिम देह लिए विराजमान है। आप इस सिंहासन को सुशोभित कर रहे हैं। आपके इस सिंहासन प्रतिहारी की पूर्ण कल्पना करना भी दुष्कर है, अतः मैं अज्ञानी इस सिंहासन प्रतिहारी का अल्प आभास से संपूर्ण साक्षात दर्शन की आकांक्षा के भाव से वंदना करता हूँ। हे विभो, तरल स्वर्ण के समान प्रभाव वाली आपकी परम औदारिक देह पर कुंद पुष्पों के समान श्वेत छवि वाले 64 चंवर जो 64 ऋद्धिधारी होने के प्रतीक है निरंतर देवों द्वारा ढुराए जा रहे हैं। इन चंवरों का ढुराए जाना ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शारदीय पूर्णचंद्र के समान प्रभाव वाला झरना झरझर झर झर रहा हो। इस परम दृश्यावली को पाकर मेरे ज्ञान चक्षु कृतार्थ हो रहे हैं। इसका वर्णन दुष्कर है। आपके इस 64 रिद्धि के प्रतीक 64 चौरों के प्रतिहार्य की भाव वंदना करता हूँ। हे छत्रपति, आपकी द्विकोटि बाल रवि की प्रभाव वाली परम औदारिक देह के ऊपर स्थित क्रमशः ऊपर की ओर छोटे होते हुए तीन छत्र स्थित है। ये छत्र आपकी तीनों लोकों पर प्रभुता के प्रतीक है। इन छत्रों पर जड़ित रत्न हीरे मणियां आपकी प्रभा से जगमगा रहे हैं। अन्य राजाओं व देवों के छत्र उन्हें सूर्य के आताप से बचाते हैं, लेकिन आपके ये छत्र ज्योतिष देव सूर्य को आपकी द्विकोटि सूर्यों की शीतल प्रभा की चकाचौंध से बचाते हैं। हे प्रभो, इस अवर्णनीय शोभा को पाकर मेरे ज्ञान चक्षु कृतार्थ है। आपके इस त्रिछत्र परिहारी की मैं भाव वंदना करता हूँ। द्वादश कोटि देव दुन्दुभि आदि देव वाद्यों की सुमधुर मनमोहक ध्वनि दशों दिशाओं को गुंजायमान कर रही है जो तीनों लोकों के जीवों को रत्नमय संपदा को प्राप्त करने हेतु आमंत्रण दे रही है तथा आपका सुयश प्रसारित कर रही है। आगामी तीर्थंकर के जीव आचार्य श्री समंत भद्र के अनुसार कोटि कोटि देवों की सहस्त्र जीवाओं से की जा रही सुमधुर वंदना ध्वनि तीनों लोकों के जीवों को मुक्ति प्रदाता तीर्थंकर प्रभु के समक्ष आने का आमंत्रण दे रही है। इस दुन्दुभि ध्वनि की कल्पना से मेरे ज्ञान कर्ण धन्य हो गए हैं। मैं इस दुन्दुभि प्रतिहारी की भाव वंदना करता हूँ। हे सुवासित गंधधारी, आपके परम औदारिक देह को स्पर्श कर बहने वाली मंद मंद बयार से सुगंधित व निरंतर मंदार सुंदर नमेरु पारिजात देव वृक्षों के पुष्पों की गंध से समोचरण का वायुमंडल सुगंध से सुवासित है। ऐसा अकल्पनीय वातावरण अवर्णनीय है। आचार्य श्री समंत भद्र के अनुसार आपकी परम औदारिक देह से सुगंधित वातावरण में देव निरंतर जहां वंदना पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, ऐसे वातावरण में परम ऐश्वर्यधारी द्वादश कोष्ठों में स्थित असंख्य सम्यकदर्शी जीवों को मोक्ष मार्ग प्रदायक आपकी देशना ऊर्ध्वगामी मुक्ति मार्ग प्रदान कर रही है। इस अकल्पनीय वातावरण को पाकर मेरी ज्ञानेन्द्रियां कृतार्थ हो रही है। निश्चित ही मैं आगामी भवों में आपके समान होकर सिद्ध शिला पर ज्ञान देह में स्थित होऊंगा। ये अद्वितीय भामंडलधारी, हर प्राणी का प्रभा मंडल उसकी लेशिया के रंग के अनुसार होता है तथा बिरले ही मुनियों का प्रभा मंडल प्रकाशवान होता है। 16 कारण जी भावना से उपजे आपके तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण आपका भामंडल अन्यों के भामंडल से भिन्न है, क्योंकि हर जीव को आपके द्विकोटि बाल रवि के समान शीतल मनोरम प्रभा मंडल में तीन भूतकाल एक वर्तमान तीन आगामी भावों का दर्शन होता है। पर चरम शरीरियों को सिर्फ तीन भूतकाल के तथा वर्तमान भाव ही दिखाई देता है। हे भगवान, कामना है कि आगामी भवों में मैं भी अपने भवों का दर्शन कर सम्यकदर्शी बनकर मुक्ति प्राप्त करूं। हे नाभिनंदन, आपकी सर्वांग से खिड़ती मेघ गर्जना या सागर की लहरों की ध्वनि के समान ओंकार ध्वनि में देशना जो सम्मो शरण में स्थित प्रत्येक जीव को उसकी भाषा में सुनाई देती है, जैसे स्थिर दीपक की लो प्रत्येक दिशा से देखने वाले को एक जैसी दिखाई देती है, उसी प्रकार पूर्व मुखी विराजमान जिनेन्द्र देव आप प्रत्येक जीव को अपनी ओर मुह कर देशना देते दिखाई देते हैं। जिस प्रकार ब्लैक होल की अणु संरचना क्षय से ब्लैक होल अतुल बलशाली बनकर प्रकाश को भी अपने में खींच लेता है, उसी प्रकार तीर्थंकर प्रभु भी तप से विशिष्ट स्थिति बनाकर अनंत बलशाली हो जाते हैं। सम्मो शरण के एक योजन में स्थित 12 कोष्ठों में तीनों लोकों के जीव समा सकते हैं। जैसे एक सिद्ध की अवगाहना में अनंत सिद्धों की अवगाहना समा सकती है, वैसे ही जैसे एक दीप के प्रकाश में अनंत दीपों का प्रकाश समा सकता है। हे सदैव जागृत प्रबुद्ध, आपकी प्रभा सूर्य से द्विकोटि गुना शीतल प्रकाश के कारण सम्मो शरण में सदैव दिन रहता है, पर काल गणना के अनुसार 4 संध्याओं पर गणधर चक्रवर्ती विशिष्ट पुण्यशाली जीवों के शंका समाधान हेतु पूछने पर आपकी देशना अक्षरित रूप से सम्मो शरण स्थित सभी जीवों को सम्यक दर्शन प्रदान करती है। अंतिम तीर्थंकर महावीर के जीव मारीच ने आदिनाथ के सम्मो शरण में उपशम सम्यक दर्शन का लाभ लिया तथा जाना कि वे तीर्थंकर होने वाले हैं। अभिमानवश वे 5 अरब भवों तक भवसागर में गोते खाते रहे तथा सिंह पर्याय में चारण रिद्धिधारी मुनियों के संबोधन से सम्यक दर्शन प्राप्त कर कुछ भव उपरांत महावीर बने। उनकी देशना को गणधरों ने गुंथन कर सहेज कर हमारे लिए पंचम काल में प्रदान किया। उनके शासन काल में गौतम गणधर, सुधर्माचार्य तथा जम्बू केवली भी पंचम काल में केवल ज्ञानी बनकर सिद्ध परमेष्टि बने। पंचम काल में धर्म विनाशकों ने भगवान महावीर की देशना को विरूपित किया, जिसे पुनः आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य विदेह क्षेत्र स्थित तीर्थंकर से साक्षात प्राप्त कर शोधन किया, पर उसे भी विरूपित किया गया है। अतः हम अज्ञानियों के पास भावनाओं के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं है। हे दीनानाथ, मेरी आकांक्षा है कि आगामी भव में विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर साक्षात जिनवाणी का श्रवण कर आपके समान सिद्ध शिला पर ज्ञान शरीर धारण करूं। हे कृपा सिंधु, जब भी अन्य क्षेत्र में स्थित पुण्यशाली जीवों के सम्यकदर्शी होने का समय आता है तो धर्म चक्र आपके आगे चलता है तथा आप 500 धनुष ऊपर गगन चारण करते हैं। आगे आगे देव आपके चरणों के नीचे 225 प्रफुल्लित स्वर्ण कमल बिछाते चलते हैं तथा चारों दिशाओं में देव 56 स्वर्ण कमल लिए चलते हैं। आपका सम्मो शरण का इतना ऐश्वर्य होते हुए भी आप निष्प्रही भाव से स्वर्ण कमलों की शोभा बढ़ाते हुए उनसे 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। आपके आगमन के पूर्व ही उस क्षेत्र में 6 ऋतुओं के फल एक साथ फलते हैं तथा मृत्यु का अभाव हो जाता है, परस्पर विरोधी जीवों में मैत्री भाव हो जाता है। हे दया निधान, आपकी इस गगनगामी ऐश्वर्य का मैं भी अवलोकन कर कृतार्थ हूं। हे धर्म सभा नायक, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। सोधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर पद्माकार सम्मो शरण की रचना करता है। इतना ही नहीं, आप जन्म से 10 अतिशय जैसे गर्भ आगमन के पूर्व रत्नों की वर्षा, अतुल बचाली की जन्म के समय अंगूठे के दबाव से सुमेरु पर्वत को डोला दे, गर्भकाल से अवधि ज्ञानी, किसी गुरु से शिक्षा नहीं लेना क्योंकि आपसे गुरु यानी अधिक ज्ञानी कोई है ही नहीं, स्वयं ही बिना आचार्य के दीक्षा लेना, शतेंद्रों से सेवित, केवल ज्ञान के 14 अतिशय अष्ट प्रतिहार्य शरीर में अष्टाधिक सहस्त्र लक्षणों आदि ऐश्वर्य क्या किसी अन्य देव या चक्रवर्ती के हैं? कदापि नहीं, क्योंकि वे भी आपके सेवक होकर आपसे न्यून हैं। आपकी विभूतियों की तुलना की ही नहीं जा सकती, जैसे सूर्य की तुलना क्या अन्य ग्रह नक्षत्रों से की जा सकती है। लेकिन इतनी ऐश्वर्य विभूति होते हुए भी आप सभी से अंतरंग व बाह्य से निष्परिग्रही हैं। हे मुक्तिदाता, मैं अंकिंचन आपसे आपके समान बनाने की विनती करते हुए नमन करता हूँ। आचार्य श्री मानतुंग का भक्तामर, जो प्रथम शब्द भक्तामर होने से जाना जाता है, यह तो प्रथम जिनेंद्र की वंदना है, जिसके भाव अवर्णनीय हैं। आचार्य श्री ने पंचम काल में मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष मार्ग दिया है, लेकिन लौकिक आकांक्षा वालों के लिए लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। वैसे आकांक्षा करना चिंतामणि रत्न छोड़कर कांच के मन के लेने के समान है, लेकिन अशुभ कर्मों के वशीभूत दुखी जीवों के अशुभ कर्मों का क्षय आचार्य श्री की रचित यह स्तुति करती है। यह स्तुति अनेक विपत्तियों का शमन करती है, लेकिन आचार्य श्री ने कुछ ही बताया है। हे मिथ्यात्वनाशी जिनेन्द्र देव, जिसके कर्ण मूल से झरते कपोलों को सिक्त करती मद जल जिस पर भोरे गुंजायमान कर रहे हो, ऐसे मदांध चिंगारते एरावत जैसे विशाल हाथी के सामने आपके भक्त निर्भय रहते हैं। यहाँ आचार्य श्री मिथ्यात्व के विकराल हाथी से भक्तों को निर्भय कर रहे हैं। आचार्य अंधकार नाशी पूजा के दीप का महत्व बता रहे हैं। हे क्षमाभूषण, जिसने हाथियों के मस्तकों को चीर कर रक्त में सनी गजमुक्ताओं से धरती को शोभायमान करता, क्रोध से जिंघाड़ता, दहाड़ों से सभी दिशाएं कंपायमान करता सिंह आपके भक्त के सम्मुख मृग शावक के समान निरीह हो जाता है। यहाँ आचार्य श्री स्वयं के व शत्रु के क्रोध के शमन का मार्ग बता रहे हैं। आचार्य श्री पूजा में चंदन का महत्व बता रहे हैं। हे कर्माग्नि शामक वृषभेश, कल्प काल के अंत के प्रबल झंझावत से प्रज्वलित वन की अग्नि जो आकाश को चिंगारियों से क्षोभित करती समस्त वन को अपनी असंख्य लपलपाती जिह्वाओं से भस्मीभूत करने को उतारू हो, आपके स्मरण की शीतलता कवच को धारण कर आपके निर्भय भक्त उसे पार कर जाते हैं। यहाँ आचार्य श्री भक्तों को कर्म ज्वालाओं से निर्भय कर रहे हैं। आचार्य श्री पूजा में धूप का महत्व भी बता रहे हैं। हे कालजयी, लाल मणि के समान रक्तवर्णी आँखों वाला, कोयल के कंठ के समान काले रंग के फण को तान उछलते फुंकारते प्रबल साक्षात यम रूपी नाग को आपके भक्त आपकी स्तुति की नागदमनी मणि को धारण कर निशंक लांग जाते हैं। यहाँ आचार्य श्री मृत्यु भय से निर्भय कर रहे हैं। आचार्य श्री पूजा में मोक्ष फलदायी फल का महत्व बता रहे हैं। हे परम भट्टारक, रण क्षेत्र में जहाँ घोड़े उछल रहे हों, हाथी चिंगार रहे हों, रण बांकुरे शस्त्र लिए मारो मारो का कोलाहल कर रहे हों, ऐसी प्रचंड सेना भी आपके भक्त के समक्ष आपके नाम स्मरण मात्र से दुम दबाकर पलायन कर जाती है। यहाँ आचार्य श्री भक्तों को आपके निशंक स्मरण से काम के रणक्षेत्र को निर्भय पार करवाते हैं तथा पूजा में चढ़ाए जाने वाले पुष्प का महत्व बता रहे हैं। हे खेवटिया, जहाँ भाले से छिदे हाथियों के रक्त की विभत्स रक्त धारा को महारथी योद्धा भी तैर कर पार न कर पा रहे हों, ऐसे भयानक युद्ध में आपके चरण कमलों के वन में आश्रयी भक्त ऐसे रण क्षेत्र के तालाब की रक्त धारा को जल के समान पार कर जाते हैं। आचार्य श्री भगवान पूजा में भवसागर तारक जल का महत्व बता रहे हैं। हे तारणहार, बड़वाग्नि के ताप से खलबलाते भीषण उद्वेलित सागर जिसमें विशाल मगर घड़ियाल शार्क आदि जीव क्रोध से बिलबिला रहे हों, ऐसे सागर में स्थित नौका पर आपके भक्त आपके नाम की पतवार लेकर अक्षति पूर्वक पार हो जाते हैं। यहाँ आचार्य श्री भक्तों को सुधा सागर से पार होने का मार्ग बता रहे हैं। आचार्य श्री पूजा में सुधा रोग नाशी नैवेद्य का महत्व बता रहे हैं। हे परम वैद्य, अमूल्य औषधियों के सेवन करने पर भी घड़े के समान फूले पेट वाले जलोदर के शोचनीय स्थिति में पहुंचे रोगी जो जीने की उम्मीद छोड़ चुके हों, ऐसे रोगी भी आपके चरण कमलों की धूली से कामदेव के समान अतुल सौंदर्यधारी हो जाते हैं। आचार्य श्री जन्म जरा मृत्यु रोग को नाश कर सिद्ध पद प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं। आचार्य श्री पूजा में अर्घ से अनर्घ पद यानी सिद्ध पद पाने का मार्ग बता रहे हैं। हे मुक्तिदाता, गले से पैरों तक बेड़ियों से जकड़े 48 तालों वाले कारागार का बंदी स्वयं मानतुंग, जिसकी जंघा रक्त से सनी निरंतर पीड़ा देती बेड़ियां क्षोभ रहित आपकी 48 काव्यों वाली भक्तामर की रचना कर कारागार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ आचार्य श्री भगवान गुणों के सागर भक्तामर के भाव सहित पठन श्रवण से अनंत कर्मों की बेड़ियों से बंधे जीव को संसार कारागार से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। आचार्य श्री इस महाकाव्य भक्तामर के निशंक दृढ़ श्रद्धान से भावपूर्वक निरंतर सकाम स्तवन से लौकिक रूप से मदोन्मत हाथी, क्रुद्ध सिंह, भीषण दावानल, क्रोधित नाग, उद्वेलित सागर, असाध्य रोग, कारागार के बंधन आदि के भय भी भयभीत होकर पलायन कर जाते हैं तथा अलौकिक रूप से निष्काम स्तवन से विभिन्न कषायों से मुक्त कर कर्म बेड़ियों को तोड़कर भवसागर कारागार से मुक्ति प्रदान कर सिद्ध पद प्रदायी मार्ग बता रहे हैं। हे मुक्तिदाता, तीनों लोकों में व्याप्त आपका आत्म प्रदेश तीनों वातवलियों की मालाएं धारण कर चुका हो। हे स्वामी, आपके गुणों की वंदना की वाटिका में प्रफुल्लित चित्र विचित्र गुण पुष्पों से गुंथी गई इस भक्तावर की माला को कंठ में धारण कर या कंठस्थ कर सकाम मनन करने वाला भव्य जीव लौकिक संपदा सुख तथा अंततः मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा निष्काम वंदना करने वाला जीव सीधे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करता है। आचार्य श्री मानतुंग की इस परम अभयदायी कृति से भाव वंदना करने वाला भव्य जीव भवसागर पार कर परमानंद को प्राप्त होता है, पर अज्ञानी जीव निष्काम वंदना की पारसमणि को छोड़ लौकिक सुख की कामना से स्तुति करते हैं तो लौकिक सुख प्राप्त कर भवांतर में मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करता है। पंचम काल में हम अज्ञानी जीव इस अनुपम कृति में की गई स्तुति से उपकृत हो रहे हैं। मुझ अज्ञानी ने भाववश आचार्य श्री के भावों में भावी तीर्थंकर आचार्य श्री समत भद्र की जिन स्तुति शतक महाकवि रत्नाकर के भरतेश वैभव तथा मुनि श्री पुष्पदंत के मृत्युंजयि प्रवचन के भावों को मेरी भाषा में बेमेल समाहित कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इस मूर्खतापूर्ण कृत्य से मैं आप विद्वजनों के समक्ष हास्य का पात्र हूँ। शास्त्रों के विरूपण से तथा अज्ञान से अनेक गलतियां की है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अज्ञानी जिस प्रकार महावीर जी में मीणा जाति के भक्त भगवान को भाव सहित रोटी भेंट कर सहज भाषा में महावीर प्रभु से भोजन का आग्रह करते हैं, उसी प्रकार से मेरी भाव वंदना है। विद्वजनों के समक्ष मैं अक्षम्य हूँ। आशा है कि त्रुटियों पर ध्यान न देकर मेरे भावों को समुचित शोधन कर क्षमा प्रदान करें।